नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने कनाडा के कनानस्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ रुपए के सामूहिक इनाम वाले 12 कट्टर नक्सलियों ने समर्पण किया। भारत और मध्य एशिया के 5 देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिज तत्वों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि दिखाई। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन और टाटा ने पहली बार फ्रांस से बाहर हैदराबाद में रफाल लड़ाकू विमानों के ढांचे बनाने के समझौते किए। देश के विभिन्न भागों में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज शाम महिला सिंगल्स के फाइनल में आर्यना सबालेंका का सामना कोको गॉफ से। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में कनानस्किस में इस महीने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल श्री मोदी को फोन करके इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने श्री कार्नी को हाल के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी और शिखर बैठक में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। ओटावा में संवाददाताओं से बातचीत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि G7 सम्मेलन में उभरते और विकासशील देशों के बीच भागीदारी बढ़ाने पर विशेष रूप से बातचीत होगी।
India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continue to law enforcement dialogue. So there's been some progress on that, recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted.
G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में कनानस्किस में होगा। 1 करोड़ रुपए से अधिक के सामूहिक इनाम वाले 12 कट्टर नक्सलियों ने कल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण कर दिया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री भी है, कल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित सुदूर कवंडे गांव के दौरे पर थे। करीब 12 नक्सली, जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, उन्होंने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें मुख्यमंत्री फडणवीस ने संविधान की एक प्रति भेंट की। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में राज्य में 28 माओवादी मारे गए, 31 गिरफ्तार हुए और 44 ने आत्मसमर्पण किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पण करने पर सरकारी नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। श्री फडणवीस ने गढ़चिरौली को उसके प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करते हुए एक स्टील सिटी के रूप में भी विकसित करने का संकल्प किया है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
भारत और मध्य एशिया के देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आयोजित भारत मध्य एशिया संवाद की 4th बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में सहभागी देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए प्रतिनिधिमंडलों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित किया। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। 10 ब्रिक्स देशों की संसदों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद को कतई सहन न करने की नीति पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 4 और 5 जून को ब्राजील के ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में रफाल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने से संबंधित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोनों कंपनियों की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के एरोस्पेस बुनियादी ढांचे में ये इकाई महत्वपूर्ण निवेश है। साझेदारी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद में रफाल विमान के प्रमुख संरचनात्मक ढांचों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक निर्माण केंद्र स्थापित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AINN News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले करीब 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम वैश्विक नेतृत्व और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देंगे।
पिछले दशक में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और जलवायु कार्रवाई में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। देश ने वित्त वर्ष 2024-25 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते अब कुल क्षमता 220.10 गीगावाट हो गई है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा में तेज वृद्धि के साथ साथ परमाणु ऊर्जा में भी अच्छा इजाफा हुआ है। भारत अब अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 7वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैव ऊर्जा कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी पहल कम कार्बन अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं। भारत की यह स्वच्छ ऊर्जा पहल उसके वैश्विक जलवायु नेतृत्व से जुड़ी हुई है। COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत लक्ष्य घोषित किए, जिनका उद्देश्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को आकार देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिकारक बुनियादी ढांचे के गठबंधन का संस्थापक सदस्य और प्रमुख साझेदार है। ये मंच विशेष रूप से दक्षिणी देशों में स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। भारत की यह यात्रा दिखाती है कि सतत विकास केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक सच्चाई बनता जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू करने में महत्वपूर्ण कदम के रूप में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल के शुभारंभ की सराहना की है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्ति प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता लाएगा, जिससे समुदाय की वंचित महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा।
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल, ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करे।
ये विशेष साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच बकरी ईद मनाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर नमाज पारंपरिक स्थानों पर ही अदा की जाए और कोई नई परंपरा ना शुरू की जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद उल अजहा को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। उन्होंने लोगों से इस गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।
कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए। कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पूरे प्रदेश में त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी न्यूज, लखनऊ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स के फाइनल में आज शाम शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्याना साबालेंका का सामना विश्व नंबर एक खिलाड़ी कोको गॉफ से होगा। बेलारूस की साबालेंका ने पोलैंड की ईगा स्वियातेक को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमेरिका की गॉफ फ्रांस की लोइस बोइसिसोन को पराजित कर फाइनल में पहुंची। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में येनिक सिनर का सामना कार्लोस अल्काराज से होगा। सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले इटली के लोरेंजो मुसेट्टी के चोटिल होकर मैच से हटने के बाद स्पेन के कार्लोस अल्काराज अल्काराज फाइनल में पहुंच गए। ये अल्काराज के लिए लगातार दूसरा फ्रेंच ओपन का फाइनल होगा। इटली की सारा ईरानी और आंद्रिया वावासोरी ने अमरीकी टेलर टाउनसेंड और इवान किंग को हराकर मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा का खिताब जीता। उधर शतरंज में मैग्नस कार्लसन ने स्टारवेंजर में कल अपना 7वां नॉर्वे शतरंज खिताब जीता। उन्होंने अंतिम दौर में अर्जुन एरिगेसी के साथ ड्रॉ खेलकर ये शानदार उपलब्धि हासिल की। नाटकीय अंतिम दौर के बाद 5 बार के विश्व चैंपियन के 16 अंक थे। 15.5 अंक के साथ अमरीकी ग्रैंड मास्टर फैबियानो कारुआना दूसरे और 14.5 अंक के साथ भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत के स्पिन गेंदबाज पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है।
मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। कल तक पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
धन्यवाद प्रियंका। घाटी बुला रही है, सबसे ऊंचे पुल से कश्मीर ले जाएगी ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में चेनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक जागरण ने नए शिखर पर विकास शीर्षक से लिखा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलमार्ग से जुड़ा देश। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री का बयान प्रकाशित किया है, पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर किया कायराना हमला, हमने वहां कयामत ला दी। हरिभूमि की खबर है, नौसेना ने जंगी बेड़े में 18 जून को शामिल होगा अर्नाला पोत। 80% स्वदेशी तकनीक से लैस यह पनडुब्बी रोधी उथले पानी की श्रेणी का पहला पोत है। हिंदुस्तान ने बताया है, पानी के लिए पाकिस्तान ने भारत से लगाई गुहार, सिंधु जल संधि बहाल करने को 4 बार भेजे पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 5 साल की सबसे बड़ी 0.5% कटौती करने को राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर का कहना है, बैंकों ने ब्याज दर घटाई तो प्रति लाख 80 रुपए घटेगी EMI।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ रुपए के सामूहिक इनाम वाले 12 कट्टर नक्सलियों ने समर्पण किया। भारत और मध्य एशिया के 5 देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिज तत्वों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि दिखाई। फ्रांस के एरोस्पेस कंपनी दसा एविएशन और टाटा ने पहली बार फ्रांस से बाहर हैदराबाद में रफाल लड़ाकू विमानों के ढांचे बनाने के समझौते किए। देश के विभिन्न भागों में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला सिंगल्स में आरेना सबालेंका का सामना कोको गॉफ से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।